ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच प्रतिजग्राहतद्वाढम् नारदः साधुसम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयं। श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्रतिजग्राह स्वीकार किया तत् वह बाढ़ तथास्तु नारदः नारद मुनि साधु सम्मतः जो माने हुए साधु हैं एतावान इतना साधुवादः साधु पुरुषों के अनुकूल हे निःसंदेह तितिक्षेत वह सहन कर सके ईश्वरः यद्यपि प्रजापति दक्ष को साप देने में समर्थ स्वयं स्वयं अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जय श्री प्रभुपाद की अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, चूंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष हैं अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें साप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया तद्वाढ़म ठीक, तुमने जो भी कहा है उत्तम है, मैं इस साप को स्वीकार करता हूँ। वे चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को साप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु साधु हैं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद्भागवतम 3:25-21 में कहा गया है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात सत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। साधु के लक्षण हैं कि वह सहिष्णु दयालु तथा सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत होता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। चूंकि नारद मुनि सर्वाधिक उच्च साधु या भक्त हैं अतः उन्होंने प्रजापति दक्ष का उद्धार करने हेतु उस साप को मौन भाव से सह लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को इसी सिद्धांत की शिक्षा दी है श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को इसी सिद्धांत की शिक्षा दी है तृणादपि सुनि चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को रास्ते में तिनके से भी तुच्छ समझकर मन में विनम्र भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए तथा दूसरों को आदर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए संसार भर में या सारे ब्रह्मांड में भगवान की महिमा का प्रचार करता है, उसे घास या तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, क्योंकि प्रचारक आराम देह जीवन नहीं बिता सकता। निस्संदेह प्रचारकों को अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। वह कभी कभी न केवल शापित होता है अपितु उसे शारीरिक चोटें भी सहनी पड़ती है। उदाहरणार्थ, जब नित्यानंद प्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो उच्चक्के भाइयों के पास कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने गए तो उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई जिससे उनके सिर से खून बहने लगा था। फिर भी उन्होंने सहिष्णुता पूर्वक उन दोनों उच्चकों का उद्धार किया जिससे वे पूर्ण वैष्णव बन गए। प्रचारक का यही कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट को तो सूली पर भी चढ़ना पड़ा था। अतएव नारद मुनि को श्राप दिया गया, सॉरी, अतएव नारद मुनि को दिया गया श्राप अधिक आश्चर्यप्रद नहीं था और उन्होंने उसे सह लिया। अब यह पूछा जा सकता है कि नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सम्मुख क्यों रुके रहे और उनके सारे दोषारोपों तथा शापों को सहन सहते रहे। क्या यह दक्ष के उद्धार के लिए था? उत्तर है हाँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रजापति दक्ष द्वारा अपमानित होने के बाद नारद मुनि को वहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए था, किंतु वे जानबूझकर दक्ष के कटु शब्दों को सुनने के लिए रुके रहे, जिससे दक्ष का क्रोध शांत हो जाए। प्रजापति दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, उन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे थे, इसलिए नारद मुनि को आशा थी कि श्राप देने के बाद दक्ष तुष्ट होकर तथा क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेंगे और इस तरह वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त करेंगे तथा उनका उद्धार हो सकेगा। जब जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद का अपमान किया तो नित्यानंद सहनशील बनकर खड़े रहे, इसलिए दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने पश्चाताप किया, फलस्वरूप बाद में वे पूर्ण वैष्णव बन गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम से षष्ठ स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप नामक पांचवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। घटना क्रम को आप लोग जानते होंगे, जानते हैं। यह श्लोक इस अध्याय का यह अंतिम श्लोक है और इस अध्याय में जो घटना घटी है उसका इस अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उसमें से कमेंट अपना करते हैं, उनका एक कमेंट है, उनकी टीका है। वो जो कुछ घटना घटी, घटना से आप लोग परिचित हैं। दक्ष प्रजापति भगवान के आदेश से पुत्र उत्पन्न किए, प्रजा उत्पन्न किए। पहला जो पुत्रों का जो समूह था, सेट था, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और 10,000 पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि बेटा जाओ तपस्या करो, शक्ति करो, तपस्या से शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक विकास करो। और फिर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके प्रजा की वृद्धि करो। उस समय पृथ्वी पर पॉपुलेशन बहुत कम था, भगवान भी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते थे, ब्रह्मा जी बढ़ाना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अपने अनेक पुत्रों को निर्देश दिया था प्रजा का सृजन करें। उसी क्रम में दक्ष प्रजापति भी भगवान की उसी मिशन में लगे हुए थे कि पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। मनुष्य शरीर एक बहुत महत्वपूर्ण शरीर होता है और इस शरीर में अवसर मिलता है जीव को कि वो भगवान को प्राप्त कर ले। तो इसीलिए यह एक बहुत पवित्र काम समझा जाता है कि प्रजा संतान उत्पन्न की जाए, ताकि वो जो जीव अन्य शरीरों में है, मनुष्य शरीर में आएंगे तो वहाँ पर उनको भक्ति का अवसर मिलेगा, एक सुअवसर मिलेगा, उस सुअवसर का लाभ उठाकर भगवत धाम में जा सकते हैं अथवा मुक्त हो सकते हैं। तो इस भगवान के आदेश से ही, भगवान के आशीर्वाद से प्रजा उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ तक कि आप लोग जानते होंगे स्वयं भगवान ही इनको पत्नी भी प्रदान किए थे, पांचजन्य की वह पुत्री थी, इसलिए पांचजनी उसका नाम था। इसके साथ उसका अपना भी एक नाम था, क्या नाम था, आशक। तो उन्होंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किया एक सेट पहला फर्स्ट सेट फर्स्ट ग्रुप, और कहा कि जाओ तपस्या करो, भजन करो, शक्ति प्राप्त करो, प्रजा की वृद्धि करना है। तो बेचारे लड़के गए जहाँ सिंधु नदी समुद्र में मिलती है, उसी स्थान पर गए थे नारायण सरोवर। खूब बढ़िया से भजन में लगे हुए थे, बड़े शिष्ट वो लड़के थे, 10,000 की संख्या। नारद मुनि देखे कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, सीरियस लोग हैं, बड़ा पवित्र हैं, तो उनको उन्होंने कुछ उपदेश दिया इनडायरेक्टली, कुछ ऐसे पहेली जैसी बातें कहे और उनके दिल में लग गया। वो भक्त यह संकल्प छोड़कर आए थे तो शक्ति प्राप्त करके पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर प्रजा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन नारद जी के कृपा से, नारद जी के उपदेश से उनको वैराग्य हो गया और भगवान के भक्ति में लग गए, सन्यासी हो गए, विरक्त हो। बहुत दिन तक प्रतीक्षा करते रहे दक्ष प्रजापति की, आएंगे आएंगे लड़के, आएंगे नहीं, आए नहीं। फिर उनको सूचना मिली कि वो तो लड़के नारद जी के एसोसिएशन से, नारद जी के उपदेश से वो भगवान के भक्त बन गए। बहुत क्रोध आया नारद जी पर उनको, जिसके 10,000 लड़के नष्ट हुए, एक तरह खून पीकर रह गए जिनके 10,000 लड़कों को नारद। तो इसके बाद फिर भी साधु है, महात्मा है, भगवान का भक्त है, जो कुछ भाई किया तो फिर 1,000 उत्पन्न पुत्र किए और उन 1,000 पुत्रों को वहीं भेज दिए जंगल में, भेज तो वो उसी स्थान पर चले गए। ये लोग तो नारद जी वहाँ भी पहुँच गए, सफलता तो मिल गई, चस्का लग गया था, 10,000 कहीं बाद लोगों को उद्धार किए थे। ये लड़कों के पास आए और ज़्यादा इन लोगों को कुछ बताना नहीं पड़ा, इतना ही बताए कि देखो भाई, सबसे बढ़िया व्यक्ति होता है कि जो अपने बड़े भाई का अनुगमन करे, बड़े भाई भजन करे, तुम लोगों को भजन करना चाहिए। अब ऐसा भजन करोगे तो स्वर्गीय लोकों में चले जाओगे, और मरुदगण लोकों में, स्वर्ग में चले जाओ केवल भाई का अनुगमन करने से। वो लोगों को ही पसंद है, वो भी साधु। तो यहाँ पर जैसा वर्णन किया गया है, और 11,000 लड़के न सो, तो यह सूचना स्वयं नारद जी देने गए। नारद जी के यहाँ पर ऐसा लिखा है कि नारद जी नहीं, उनको सूचना दूसरे पहले दे दिए थे कि वो भी लड़के साधु बन गए, और उसके बाद उनको भी नारद जी ने, तो क्रोध तो था ही, नारद जी भी वहाँ आ गए सामने। नारद जी आए तो बहुत वो गुस्सा किए, कितना क्रोध, नारद जी को गाली दिए हैं, आप लोग पढ़े होंगे एक एक करके। मुख्य उनका आक्षेप था कि नारद से भाई कि नारद जी, आप अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नष्ट, असाधु को है, तुम बदमाश हो, साधु मतलब अच्छा व्यक्ति, जेंटिलमैन, तुम जेंटिल, तुम एकदम उदंड व्यक्ति हो, असाधु हो, और तुम साधु का कपड़ा पहनते हो, साधु लिंग ड्रेस तुम साधु का पहनते हो, लेकिन तुम्हारा कार्य है असाधु का, असाधु कार्य, तुम साधु का बढ़िया ड्रेस तो पहनते हो साधु का, लेकिन काम करते हो बदमाशों का। अब भाई क्या मैंने गलती किया, तो तुमने अर्भकाणाम छोटे छोटे बच्चों को, जो राजकुमार थे, राजा के लड़के के बहुत फैसिलिटी होती है, खाने का, खेलने का, कपड़ा का, सब कुछ होता है, और तुमने राजकुमारों को, वो भी बड़े हो जाते हैं तो बच्चों पर दया आनी चाहिए, एक तो राजकुमार थे, दूसरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको ने तुमने क्या कह दिया, भिक्षो मार्ग प्रदर्शित, तुमने भिक्षुक बना दिया, भिक्षमंगा बना दिया, भिक्षुक जैसे आप कल्पना कीजिए कि राजा का लड़का है, राहुल को कोई भिक्षा के लिए बाध्य कर दे, वो भिक्षा मांगना पड़े, तो अपने राजकुमारों को बच्चों को तुमने भिक्षुक बना दिया, अब इसे क्रुएल्टी क्या हो सकता है। मैं कह भिक्षुक बनाया तो मैंने भजन में लगा दिया, वो भजन करने गए तो भिक्षुक है क्या, भक्ति मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। वैराग्य हो गया उनको, डिटैचमेंट हो गया, इतना इतना ग्लोरियस चार्ज है कि बात है कि किसी का वैराग्य हो जाए, बड़ी लोग इच्छा करते हैं कि संसार से विरक्ति हो जाए, उनका विराग हो जाए। तो कहा कि देखो, देखिए नारद जी, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है मनुष्य, तो उस पर कुछ ऋण होता है, उस पर कुछ कर्ज होता है, जब तक तो वो कर्ज नहीं चुकाता है तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है। भगवान के धाम में जाने पर आपका जो ऋण है, कर्ज है, लोन है, उसको चुकाने के बाद, तो ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, उन पर ऋण चढ़ा हुआ है, जो कर्ज में है वो कैसे मुक्त हो सकता है, वैराग्य भी नहीं उससे हो सकता है। तो एक उन्होंने सिद्धांत दिया, दक्ष प्रजापति कहे कि मुक्ति जरूरी है और मुक्ति के लिए वैराग्य भी जरूरी है। तो आप कहते हैं, नारद जी आप कहते हैं कि आप उनको वैरागी बना दिए, डिटैच बना दिए, लेकिन वास्तव में डिटैचमेंट ऐसे नहीं आता है। वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य के लिए, वैराग्य के लिए आवश्यक यह बात है, एक सिद्धांत है, यहाँ पर तो साधुवाद की बात कही गई है, एक व्यवहारवाद है, कि यदि कोई व्यक्ति, संसार दुखमय है यह बात सत्य है, तो जब कोई व्यक्ति विषयों में लगता है, संसार में आता है, तो विषयों का जो तीक्ष्णता होती है, अनुभव होता है, यह दुखमय संसार है, तब वो क्या करता है, तो उसे वैराग्य हो जाता है। रूपा जी, जहाँ वह उस श्लोक का तात्पर्य लिखे हैं रूपा जी, तो एक बात कहते हैं कि वैराग्य, वो दक्ष प्रजापति कहता है कि जब तक विषय दुखमय है, आपको किसने संसार के, संसार में बहुत दुख है, भगवान कहे दुखालयम अशाश्वतम, आपने सुन लिया, तो जगत का आकर्षण खत्म नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ संसार दुख में, उसमें नहीं फंसना, विषय में नहीं फंसना चाहिए। जब अनुभव होता है, प्रैक्टिकल अनुभव, रियलाइजेशन होता है कि संसार में फंसते हैं आप लोग, घर विषय में लगते हैं, उसको तीक्ष्णता का तब वैराग होता है। प्रभुपाद जी एक प्रसिद्ध इस विषय में एक बात कहते हैं, बंगाली बंगला में लिखा गया है कि बंध्याय की बुझिबे प्रसव वेदना, बंध्या स्त्री जिसको, जो स्त्रियों को पुत्र पुत्री नहीं पैदा होते हैं, वह स्त्री कैसे जान सकती है कि बच्चे को जन्म देते समय जो कष्ट होता है उसका अनुभव नहीं होता है। प्रसव वेदना, जब बच्चे गर्भ से आते हैं तो ऐसा मान्यता है बात सत्य है कि माँ को बहुत कष्ट होता है, स्त्री को बहुत कष्ट होता है, तो उस कष्ट को कौन कर सकता है कि प्रसव के समय, बच्चे को जन्म देते समय माँ को, स्त्री को पीड़ा होती है, वह पीड़ा को कौन समझ सकता है, कौन समझ सकती है जो बच्चे का जन्म देती है, तो जन्म देती है तो उसमें पीड़ा होता है वो समझ सकते, लेकिन कोई बंध्या स्त्री है तो वो क्या समझती है वो प्रसव के समय कैसा, उस तो बच्चा ही नहीं कभी जन्म किया। तो वैसे ही संसार के दुखों को जब तक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है किसी को, तो वैराग्य होता नहीं है। कोई कह दिया अरे संसार दुख में है इसमें नहीं फंसना चाहिए, कौन मानता है, कोई विश्वास नहीं। जब वो संसार में फंसता है, विषय को भोग करता है, पर दुख होता है, तकलीफ होता है, तब उसे रियलाइज होता है, तो उसे वैराग्य हो जाता है। यह सामान्य लोगों का, भौतिक लोगों का यही विचारधारा है, और यह क्रमिक विकास भी है। तो नारद जी को तुमने उनको जो विराग होना चाहिए था, विषय में लगते, भोगों में लगते, और वहाँ पर खूब उनको दुख होता, तकलीफ होता, तब उनको नेचुरल स्वाभाविक वैराग्य हो जाता, डिटैचमेंट होता, अरे नहीं इसमें नहीं फंसना चाहिए। तो वह जो वैराग्य होता, जो सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा अपना अनुभव होगा, तो वह वैराग्य हेल्प करता है भगवान की भक्ति में। लोग समझदार रे भाई संसार दुख में है, छोड़कर भगवान के भक्ति। तो आपने तो उनका जो प्रोग्रेस हो रहा था, प्रोग्रेसिव जो उनका जो उत्थान हो रहा था, उसको आप तो डिस्टर्ब कर, अब्स्ट्रक्ट कर दिया आपने। गए हैं कह देने से, कह लेकिन संसार दुख में फिर संसार में वो फंस जाएंगे। तो यह एक मान्यता है, सिद्धांत है लोगों का, कि दक्ष प्रजापति का विचार है, और दक्ष प्रजापति के अधिकांश तो उसी के लोग फॉलोअर हैं। लोग यही समझते हैं कि जब घर गृहस्थी में रखें और घर गृहस्थी में दुख होगा तो उसे वैराग्य हो जाएगा। प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में यह बात कहते हैं कि ना, विषयों के भोग से वैराग्य नहीं होता है। इक्का दुक्का किसी को हो भी जाता है, बहुत रेयर होता है। अवंती के जो ब्राह्मण थे उनको हो गया था, उपदेश नहीं देना पड़ा, खूब दुख मिला, तो दुख मिला सबको, तो वैराग्य हो गया। किसी किसी को हो भी जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों को वैराग्य नहीं होता। तो वैराग्य होता कैसा है, किसी में डिटैचमेंट कैसे आएगा, विषयों के प्रति आकर्षण है, भोगों के प्रति आकर्षण है, उससे छूटकर भगवान में कैसे मन लगेगा। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर तात्पर्य में एक बात कहते हैं कि ऐसे किसी भी कारण से वैराग्य नहीं होता है। ऐसे प्रहलाद महाराज भी वही कहते हैं, मति न कृष्णे स्वतः प्रतोवा मिथो विपद्दित गृहव्रता नाम अदांत गोभीर मिष्टा तमिश्रम पुनस् पुनश्चरित चर्वणा। वैराग्य केवल और केवल संसार से वैराग्य होता है और भगवान में लगता है, केवल एक ही कारण है, साधु का आशीर्वाद। प्रभुपाद जी वहाँ एसोसिएशन अथवा एसोसिएशन को डायरेक्ट को ब्लेसिंग, किसी को साधु आशीर्वाद दे देता है तो वैराग्य, नहीं तो बहुत लोग वैराग्य, संसार में तो कितना दुख है, द्वंद में लोग फंसे हुए हैं, बहुत दुख होता है, कहाँ किसी को वैराग्य हो रहा है। तो केवल साधु के कृपा से वैराग्य हो रहा है। तो वह यही कह रहे थे कि तुमने, नारद जी को गाली दे रहे थे, नारद जी को कह रहे थे कि आपने गलत किया। उनका जो प्रोग्रेस होता है आध्यात्मिक, वो जाते धीरे धीरे घर गृहस्थ में आते, वहाँ विश्व में का अनुभव होता है, दुख होता है, तो उनको वैराग्य हो जाता, सात्विक वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य हो जाता है तो उनका मन भगवान में लग जाता है। तो एक तरह से 11,000 लोगों का आपने अहित किया, जो एक साधु को नहीं करना चाहिए। साधु के स्वभाव का उसने वर्णन कर दिया, साधु में क्या होता है, साधु बहुत दयालु होते हैं, नान भूय जानती, साधु जो होते हैं भगवान के जो भक्त, उनको दया होती है। ननु भागवता नित्यम भूतानुग्रह कातर, जो साधु प्रकृति के होते हैं वो जीवों पर दया करने के लिए विचलित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, कैसे मैं उसका हित कर दूं। केवल सभी साधु, जितने दुनिया के मूर्धन्य साधु हैं, वो साधु क्या करते हैं, दूसरों के हित करना चाहते हैं, प्राणियों का हित कर। केवल आप व्यक्ति हो साधु भेष में, आपके अतिरिक्त नारद जी कोई ऐसा व्यक्ति इतना जघन्य अपराध, इनजस्टिस किसी जीव पर दुख नहीं डाल सकता। रीते त्वा सौहृदघ्न, आपका स्वभाव है कि आपस में प्राणियों में जो एक संबंध से सौहार्द होता है उसमें आप नष्ट करने वाले हो। बैर आपस में जो सब सगे संबंधी मित्र हैं, मित्रता में तुम लोग आप लोग बाधा दे देते हो, पति पत्नी में झगड़े लगा देते हो, गुरु शिष्य में झगड़े लगाते हो, भाई भाई में तुम झगड़ा लगाते हो, तो तुम केवल आप हो, वो तो आप नहीं कहता होगा, तुम ही कहता हो। केवल आप ऐसा एकमात्र पृथ्वी पर ऐसा बदमाश आदमी जो साधु के भेष में रहता है और जाकर साधुओं के पंक्ति में बैठते हो, उनके साथ प्रसादम ग्रहण करते हो, उनके लाइन में बैठ जाते हो, भेष बनाते हो, लेकिन तुम एकदम गलत काम पर पड़े हुए हो। छोटे छोटे बच्चों पर दया करनी चाहिए तो उनको तुमने भिखमंगा बना। इसीलिए मैं तुमको साप देता हूं, तुमने 11,000 लोगों के घर गृहस्थी को उजाड़ा है, बसने नहीं दिया, तुम्हारा भी घर गृहस्थी कायम नहीं होगा, ऐसे ही भटकते रहोगे इस जीवन में, यहां से वहां तुम्हारा कोई घर नहीं होगा, कोई निवास, कहीं ज्यादा तो रुक भी नहीं सकते। तो यह उसने श्राप दे दिया नारद जी को। तो नारद जी ने उस श्राप को स्वीकार किया, प्रतिकार नहीं किया। यह घटना यह है, नारद जी को श्राप दे देखे, श्राप यही दिया कि तुमने 11,000 लोगों की घर गृहस्थी को उजाड़ दिया, उनके घर को छप्पर को फेंक दिया, जला दिया, भाई कोई घर बनाया है और कोई आकर उसको घास का घर बनाया है लाकर घास उसी तक छीट छाट दे। तो उन लोग कितने राजा के लड़के थे, कितना बढ़िया उनका वैभव सुख से समृद्धि से रहते, और उन लोगों को तुमने रास्ता दिखा दिया, भिखमंगे का रास्ता देखा। तो अब तुमको मैं श्राप देता हूं कि तुम भी बस जैसे तुम भिक्षुक बनाया है तो बस जीवन भर भटकते रहोगे, दर दर ठोकर खाते रहो, कहीं चैन नहीं मिलेगा। तो यह न भवेत भ्रमतः पदम, तुम एक जगह तुम्हारा आश्रम, तुम्हारा घर गृहस्थी कभी नहीं, वो समझता था होता है ब्रह्मचारी बाद में विवाह हुआ करने के प्लान में होगा, लेकिन बस खत्म फुल स्टॉप, आश्रम तो बनने का प्रश्न नहीं है, विवाह होने का कुछ प्रश्न, भटकते रहो। तो इतना कठिन श्राप था नारद जी के लिए, हालांकि कठिन नहीं था लेकिन ऐसे उसके दृष्टिकोण कठिन था। तो नारद जी इसने उसने सह लिया, नारद जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। तो प्रतिकार नहीं किया तो सुखदेव गोस्वामी अब कमेंट करते हैं, प्रति जग्राह तद, उस साप को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, कहा ठीक है आप कहते हैं तो वैसा हो। तदवा नारद, नारद के विषय में नारद जी कौन है, साधु सम्मत। अब दक्ष प्रजापति सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तुमको जरूरत नहीं थी कि वो साधु कहेंगे तो साधु, वो साधु बड़े बड़े मूर्धन्य जी स्तनकादि उनको सर्टिफिकेट दे चुके हैं, साधु सम्मत मतलब अप्रूव्ड हैं साधु। अब ये नहीं कि अब ये कह देंगे कि वो साधु हैं कि नहीं तो उसके पर निर्भर करता है, वो अप्रूव्ड सम्मत मतलब ऑलरेडी उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बड़े बड़े लोगों का, नारद जी ने सर्टिफिकेट दिया है, शिव जी ने सर्टिफिकेट, सनकादि ने सर्टिफिकेट, उनको प्राप्त है, अब आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ये कहते हैं साधु सम्मत, साधुओं द्वारा बड़े बड़े मूर्धन्य लोगों को साधु मानते हैं, चाहे दक्ष प्रजापति कुछ भी माने, उनकी कोई बात नहीं सुनने वाला है, साधु सम्मत। तो अब यह तो एतावान ही साधु बाद, आप लोग सुनते हैं ना कि मायावाद होता है, सुने हैं ना मायावाद एक सिद्धांत। तो यह जो व्यवहार है साधुवाद, साधुवाद क्या है, तितिक्षेत, तितिक्षेत मतलब कि सह लेना चाहिए, मान होता है अपमान, एक साधु के लिए क्या है साधुवाद के तितिक्षेत सह लेना चाहिए, यहां तक कि सामर्थ है कोई आपको मार रहा है आप उसको भी मार सकते हैं, उसे भी ज्यादा बलवान है, लेकिन वो नहीं करना है। यदि कोई आपका अपमान करता है, सामान्य सिद्धांत है लोग कहते हैं कि कोई हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, सुनते हैं आपने हमको ईंट से मारा तो ईंट, तब हम क्या करेंगे, ईंट से नहीं, ईंट से तो थोड़ा उससे भी हार्डर चीज पत्थर लेकर मार तो हम लोग प्राय इसी तरह हम लोग कहते हैं ईंट का जवाब, कोई एक बार गाली दिया तो हमको दस बार गाली देने को तैयार रहते हैं, थोड़ा सा अपमान अपमान किया तो हम लोग पहाड़, थोड़ा सा दुख हमको दिया तो उस पहाड़ ही गिरा देना चाहिए दुख का, तिति क्षेत्र ना सह लेना चाहिए। ईश्वर यदि वो समर्थ है तो भी सह लेना चाहिए। यह नारद जी के विषय में, नारद जी समर्थ थे, उसको भस्म कर सकते थे, दृष्टि मात्र एकदम रिड्यूस हो सकते, भस्म हो सकते थे दक्ष प्रजापति, उनके सामने कुछ नहीं थे, लेकिन एकदम तो यह है साधु बात, अचिंत्य भेद आवेद भात बात सुने होंगे, विवर्त बात सुने होंगे, साधु बात क्या है, तिति क्षेत मान कोई करता है कितना भी एकदम सह लेना चाहिए। एतावान ही साधु बात, यह साधु बात है, माया बात सुने तो यह साधु बात है कि ना, कोई हमारा अपमान कर रहा है समर्थ रहते हुए, सामर्थ्य रहते हुए, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी बात को लिखे हैं, पूरे तात्पर्य का बॉटम लाइन है कि साधु का क्या गुण होता है, भगवान कपिल देव बताए तितिक्ष वह तितिक्षा सह लेना, तितिक्ष वह कारुणिका सुहृदम सर्वदेह सुहृद सर्वदेह नाम अजात शत्रु शांता साधव साधु सहता है, मान अपमान सहता है, फिर दूसरों पर कृपा करता है, सबका वेल विसर होता है, सबका भलाई चाहता है, चाहे उसको बुराई भी करते हैं तो भी सर्वदेही नाम अजात शत्रु भगवान के भक्त का एक गुण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कपिल देव भगवान, कहते हैं अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब उसके दृष्टि में उसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया है। युधिष्ठिर महाराज के लिए कहा जाता है अजात शत्रु थे, जबकि उसके शत्रुता बहुत लोग करते थे, दुर्योधन खूब शत्रुता करते, मारने का जलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु नहीं मानते, उनके दृष्टि में कोई अजात शत्रु, हम लोग अजात शत्रु नहीं, हम लोग अजात मित्र हैं किसी पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि जो मित्रता है तो दो चार दिन ही टिकती है, थोड़ा सा भी उसमें खरोच आ गया बस खत्म, अजात मित्र हमारा कोई मित्र, जो सब पर शक करते हैं, सब पर डाउट करते हैं, सबको दुख ही देने पर पड़े तो, लेकिन भक्त होता है अजात शत्रु, उससे लोग द्रोह करते हैं, उसको मारने का प्रयत्न, वह कभी किसी को शत्रु नहीं मानता, शांत रहता है, साधु साधव साधु भूषण, उसका श्रृंगार ही साधुता, अच्छे अच्छे गुण ही उसके श्रृंगार होते हैं, उसकी शोभा एक साधु की शोभा कोई गहने से अर्नामेंट से नहीं होता है, उसके सदाचार सदगुण सत्य भाषण ब्रह्मचर्य जो गुण है, इन्हीं गुणों से वह हमेशा डेकोरेटेड रहता है, सुसज्जित रहता है। और फिर प्रभुपाद जी पुनः बहुत चैतन्य महाप्रभु का श्लोक, त्रिणादपि सुनी चेन तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनियो सदा हरि, ऐसा होना चाहिए, तीर्ण से भी अपने को तुक्ष समझना, घास में तीर्ण रास्ते में घास पड़ा हुआ है आप उसे पैर दे देते हैं, पैर ही ने जूता पहने उस पर डाल देते हैं, बेचारा दब जाता है, प्रतिकार नहीं करता है, ऐसा नहीं झगड़ा नहीं करता है कि हम पर पैर तुमने दिया, घास नहीं करते हैं ना, लान में आप घूमते फ्री घूम रहे हैं, बेचारा डाल देते हैं, थोड़ा उपचार रहता है डाल देते दब जाता है, फिर आप हटा लिए बेचारा खड़ा है, वो झगड़ा नहीं करता है। तृणादपि सुनीचे न तरु रिवर्स न तरु वृक्ष, मई के महीने में मई महीना जून बीत गया, बाजू में पेड़ खड़ा है, इसमें घर में नहीं घुस गया, चलो भाई गर्म हो गया बड़ा हाल में घुस जाए, कोई खड़ा है ना देखे जामुन का जो भी पेड़ है कि घुस सकता था, अब नजदीक है जाड़ा पड़ने लगा तो भाई चलो गेट खुला है तो घुस जाए, नहीं घुसा। मर जाता है, सूख जाता है, लेकिन याचना नहीं करता है कि हमको थोड़ा पानी कर दे। इसे तरो रिवर्स है, सुना अमान इनाम मान दे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम लोगों को दूसरों से आदर की अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हमको सम्मान करे, हमको प्रणाम करे, लेकिन 24 घंटे तैयार रहना है दूसरों को मान देने के लिए। अपनी मान की इच्छा नहीं करना, हमको कोई समय ऐसा नहीं करना चाहिए भाई हम संन्यास ले लिए हैं, चाहे भक्त बने हैं, सफरन कपड़े में ब्रह्मचारी हैं, तो उन लोगों को प्रणाम करना चाहिए। यार इतना तो करना चाहिए, गृहस्थ हैं, पतित आप लोग हैं, मैं देख कर प्रणाम ज़्यादा सेवा नहीं कर सकते हो न अपेक्षा नहीं, लेकिन 24 घंटे तैयार रहना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अब तात्पर्य में उदाहरण देते हैं। देखिए कितना कष्ट सह कर ही प्रचारक होता है, प्रचार का भगवान की भक्ति का प्रचार करना तो इजी मार्ग नहीं है, बहुत कष्ट लोग देते हैं। क्राइस्ट ईसा मसीह वो बेचारे भगवान की भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में बता रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या चढ़ा दिया, मार ही दिया, सूली पर चढ़ा कर मार दिया। नित्यानंद प्रभु हरिदास जी प्रचार कर रहे थे भगवान के विषय में जगाई मधाई को, लेकिन जगाई मधाई ने क्या किया, केवल बोल कर ही नहीं छोड़ दिया है कि तू उधर के गाली गलौज तो किए ही, उतने से उनका मन नहीं भर, लेकर जो शराब पीते थे घड़े में उस समय बोतल नहीं होता था, प्लास्टिक नहीं होता था, मिट्टी के बर्तन, उसी मिट्टी से नित्यानंद प्रभु के सिर पर ही मार दिया। कोई नित्यानंद प्रभु क्राइम नहीं किए थे, अपराध नहीं किए थे, उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़े थे, केवल कह रहे थे भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान अब उनका हेल्प है, लेकिन वो बदले में तो भगवान के यह मार्ग ऐसा है कि कठिनाइयाँ आएंगी, लोग अप्रिशिएट हमेशा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने तरह से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वो यह प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी जो कहते हैं नारद जी का भी एतावान ही साधु, यह साधुता है, ऐसा नहीं कि हमारा कोई थोड़ा ज्यादा करे, यह साधु साफ दे दिया, स्वीकार कर लिए, समर्थ थे, चाहते तो एक मिनट मोहि को रिड्यूस कर सकते थे, भस्म हो सकते थे दक्ष पर, लेकिन समर्थ होते हुए भी उन्होंने सह लिया। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं सह लेना चाहिए, प्रचार करने जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है तो हम कोई प्रश्न है तो पूछिए, एक दो मिनट समय है। बोले नहीं, ये तो हमको शायद साउंड ऐसा आवाज क्या कह रहे हैं फिर से
था। मैं बोल रहा था जैसे आपने बताया कि साधु जो है उसे समर्थ होते हुए भी इस प्रकार मान मान सा रहना चाहिए, तो मैं पूछा था कि जब वही समाज में समूह रहते हैं बाहर मंदिर से बाहर रहते हैं तो वहाँ पे कोई नौकरी करके वहाँ पे इसी सब कैसे करें।
मैं नहीं समझ नहीं आपको, यह हम जो नारद जी यह जो सुखदेव गोस्वामी का कमेंट है तो यह सबके लिए है। और जो लोग थे दक्ष प्रजापति मंदिर में नहीं रहते थे घर गृहस्थी कहीं भी अभ्यास करना चाहिए, कोई ऐसे मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि वह बुद्धि से, समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से, कि बुद्धि का प्रयोग करके छोड़ो हमारा कर्म ही था, हमको कोई मार रहा, हमने कुछ किसी को कष्ट दिया होगा, तो मन को मन प्रतिकार करना चाहते हैं, बुद्धि से समझाना चाहिए, मन शांत रहो। जब हमको कोई दुख देता है तो हमारे जो पाप का स्टॉक होता है वो खत्म होता है। नारद जी बताए कब अपने को समझाना चाहिए कि हमको कोई हम दुख में हैं तो दुख हम होते हैं तो हमारा जो पाप का जो संग्रह है वो खत्म होता है, और जो अच्छा होता है पुण्य है तो लोग प्रणाम करते हैं, सत्कार करते हैं अच्छा, तो उसे हमारा पुण्य खत्म होता है। अच्छा हमने सुकृत किया है तभी ना किसी को सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन जब सम्मान मिलता है तो हमारा पुण्य है पाइयस एक्टिविटी वो नष्ट हो कम हो धीरे धीरे कम होता है। अब जब हमको दुख में कोई डाल हम दुख में होते हैं तो दुख से हमारा जो पाप होता है स्टॉक जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो मन को बुद्धि के द्वारा समझाने का प्रयास करना चाहिए, मन चिंता मत करो हमने किसी को दुख दिया होगा, किसी को हमने तिरस्कार किया होगा तो वही हमको लौट कर आ रहा है, ऐसे अपने मन को ही समझाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे बाहर हैं चाहे भीतर कहीं भी। ठीक है, और कुछ भागवत की।